शांति। बाबा कहते हैं, बाप दादा की बच्चों के प्रति एक विशेष आशा है। हर एक बच्चा दुआ दे और दुआ ले, इसकी सहज विधि क्या है? आज इस विषय पर मार्ग दर्शाएंगे आदरणीय भ्राता राजयोगी डॉक्टर प्रेम भाई जी गुलबर्गा, जो स्वयं बाप दादा तथा वरिष्ठ दादियों के दुआओं के पालना में पले हुए और सबको दुआएं देने वाले धारणामूर्त भ्राताजी का जन्म एक संपन्न धार्मिक राजस्थानी परिवार में हुआ। भाई साहब की आयु 77 इयर्स होते हुए भी सेवा के उमंग उत्साह में अभी भी आप युवा हैं। आप 1969 से ज्ञान में चलते हुए ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित है। आपने संस्कृत में पांडित्य प्राप्त किया है और आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से गीता अलंकार का पद भी प्राप्त है। आप RERF सोशल सर्विस विंग के उपाध्यक्ष है, गुलबर्गा विभागीय निर्देशक है। मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार और मुरलियों को गहराई से अध्ययन करने में आपकी विशेष रुचि है। जैसे आपका नाम है प्रेम, प्रेम स्वरूप बन प्रेम को बांटते हुए सबको प्रेम में बांध के रखने की आपकी विशेषता है। करतल ध्वनि से हम भ्राता जी का स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे।
ओम शांति। हम सब ईश्वर पिता की माला के मणि हैं। मणि की माला कब बनती है, मणियों की माला कब बनती है? जब सब मणियां एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब मणि की माला बनती है। आप देखिए कहाँ कहाँ बैठे हैं, अलग अलग मणियों की माला नहीं होती है ना? मेरी बात समझ में आ रही, हिंदी समझ में आती है? जब बात दुआ की आती है तो दुआ उनको मिलती है जो बात सुनते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदर शब्द है आशीष, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद के पात्र बनने के लिए एक गुण आवश्यक है, वह है नम्रचित्तता, जिसको बाबा निर्माण अवस्था भी कहते हैं। जितना हम निर्माण बनेंगे उतना हमारे संबंधियों से और अन्य आत्माओं से, भले कोई अज्ञानी भी होगा वो भी लोहा मानेगा जो उन आत्माओं के प्रति जो नम्रचित्त हैं। और सबसे प्यार हासिल करना, जिसको दूसरा शब्द दुआ कहते हैं, कि सब मुझे प्यार करें, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा सबके लिए हूँ, ऐसा अनुभव कराने के लिए जरूरी है कि नम्रचित्त भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा हमारी बड़ी दादियों में, विशेष करके दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी में और गुलजार दादी में, ये गुण कूट कूट के भरा हुआ था। तभी जा करके आज हम उनके न होने पर भी याद करते हैं। कल रविवार की मुरली में बाप दादा ने भी बार बार बड़ी दादी का नाम लिया। ये तब संभव हो सकता है जब हम ईश्वरीय सेवा में जितना निर्माण चित्त होंगे उतना हमारे अंदर दूसरों की आशीष, आशीर्वाद, दुआएं लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारी ब्रजेंद्र दादी थी बॉम्बे सयान की, वो बार बार कहती थी सिख सिख झुक झुक मर मर। यदि ईश्वरीय एक उन्नत अवस्था पानी है तो एक गुणा अपनाओ सिख, सीखने का सीखता वही है जो मनुष्य नम्रचित होता है, उसको लगन होती है। जैसे आज भी बाबा ने बार बार कहा डायरी रखो, तो डायरी रखने का तात्पर्य है सीखना। सीखने का गुण होता है तो छोटों से भी सीखेंगे, बड़ों से भी सीखेंगे, और कोई अनपढ़ है उससे भी सीखेंगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है अनपढ़ के अंदर ना मैनर्स एटिकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हैं, ये एक विशेषता है। इसीलिए जहाँ कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से मूल से हमें दुआएं मिलती हैं तो उसे नम्रचित्त होकर के स्वीकार करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि हम सीखना सीखें, कि हर बात से सीखें। आज भी बाबा कह रहे थे मुरली पढ़ो, यदि आपने क्लास में नहीं गया तो भी कोई बात नहीं है, पर पढ़ना होगा तो अटेंडेंस पड़ेगी, क्योंकि बाप की इस बात को मानेंगे तो दुआएं हमारे पल्ले पड़ेंगी, क्योंकि बाबा जो बोलते हैं वो हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। और बाबा खुद भी कहते हैं तेरे भाने सबका भला। तो इसीलिए सीखने का ये गुण है, विशेषता है, ये होना चाहिए। जबकि सुनना सीखना नहीं होता है, सुनने को जब हम आत्मसात करते हैं, सुनने को जब धारणा मूर्त में बदल देते हैं, तब जा करके वह गुण बनता है, और वह गुण अनेक आत्माओं को आकर्षित करता है। इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सीखने का तात्पर्य है उसे अपनाना। जब तक नहीं अपनाएंगे तो उसका रंग नहीं चढ़ेगा, और रंग नहीं चढ़ेगा तो उस विशेषता का अनुभव अन्य आत्माओं को नहीं होगा। हम अपने आप में ही मियाँ मिट्टू बन जाएंगे कि हमने ये सुना। नहीं, कई बार ये भी कहा जाता है कान खोल करके सुनो, तो मैं कहता हूँ कान खोलने को दरवाजे ही नहीं है, खुले कान रखने के लिए जरूरी है आँख खुली रखना। जब आँख बंद होगी ना तो कान भी बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए सुनने के समय भी ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ तक दत्तचित्त होकर के बात को सुन रहा हूँ, ये आवश्यक है। सीखना तो इसके बाद आता है झुकना, सिख सिख झुक झुक, ये झुकने की बात आती है नम्रचित्त अवस्था। आप देखेंगे दादी बाप दादा के हर एक पॉइंट्स को झुक करके माना, नम्रचित्त होकर के दादियों ने अपनाया, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। कल भी कहीं हम सुन रहे थे कि इस ज्ञान में प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बाप दादा भी गुणों का जो विस्तार है वो खुद ही करते हैं, ज्ञान का जो विस्तार है वो खुद ही करते हैं। क्योंकि इतने लंबे अरसे तक, करीब करीब 89 ईयर्स से एक ही ज्ञान दिया जा रहा है, तुम आत्मा हो, तो आप सोचेंगे कि एक आत्मा को समझने के लिए, एक आत्मा के गुणों को अपनाने के लिए, एक आत्मा के गुणों को आत्मसात, आत्मा के गुणों को ही आत्मसात कर करके अन्यों तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उन दादियों को। तो हम तो जहां मैं समझता हूं यहां जितने बैठे हैं उतनों में बहुत एक बाबा के अव्यक्त होने के बाद आए हैं, और कुछ तो 2017 के बाद, फिर भी बाबा हमें खींच लेता है। ये भी एक सुंदर व्यवस्था है कि बाप दादा का सीधे न आने के बावजूद भी हम ये समझ के आते हैं कि बाप दादा है, तो ये भी एक आज्ञा पालन करने का एक पद्धति जैसे है। तो सीखते हैं झुककर नम्रचित्त होकर के, जैसे हम यहाँ ओम शांति बोलते हैं, देखिए आप संतुष्ट हो या न हो, खुशी में हो न हो, परंतु एक नहीं सौ लोगों की ओम शांति का उत्तर मुस्कुराते हुए देना पड़ता है, तो क्या होता है, हम भी मुस्कुराते हैं, सामने वाला भी मुस्कुराता है, और ये मुस्कुराहट का जो आदान प्रदान है, ये दुआ लेना और दुआ देना है। तो हमने दिया, उन्होंने लिया, उन्होंने दिया, हमने लिया, तो ये बात है। तीसरी बात है मर मर, कहा जाता है जब तक मरेंगे नहीं माना नया जन्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ मैं जो आत्मा हूँ, मुझ आत्मा के अंदर कई संस्कार मातृगर्भ से ही प्राप्त होते हैं, उसके बाद संबंधियों से होते हैं, गुरुजनों से होते हैं, और उसके बाद अब आकर के हम बाबा के बने हैं। तो बाबा के कल कहीं मुरली में सुन रहे थे कि कभी पहले पूर्व बिफोर ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा संकल्प आएगा, ऐसे विकृत विचार आएंगे, परंतु आ रहे हैं। तो उसने कहा कि हमने ध्यान नहीं दिया, उधर आते तो थे परंतु उसके ओर हमारा लक्ष्य नहीं गया। खैर गया या नहीं गया, अब तो हमारे ऊपर वो हावी हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए कई आत्माओं की दुआओं की आवश्यकता में होती है। इसीलिए कहा जाता है मर मर, मरने का तात्पर्य है कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, उन संस्कारों से हमको मुक्ति पानी है। और वो संस्कार कौन से हैं, इसके पीछे आप जितना दत्तचित्त होकर के एकाग्र होकर के लक्ष्य रखेंगे, ये संस्कार मेरे अपने नहीं हैं। जैसे गत मुरली में भी, अव्यक्त मुरली में बाबा कह रहा था कि ये मेरे पुराने संस्कार हैं जो ऑब्स्टेकल बनते हैं, विरोधाभास क्रिएट करते हैं दुआ लेने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे, एक मजे की बात पहले होती थी, साष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत होता था, जिसे वो सामने वाला व्यक्ति आशीर्वाद देता था, आयुष्यवान भव, विजयी भव, यदि माताएं होती थी तो उनको आशीर्वाद मिलता था, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। तो उस जमाने में ऐसे होता भी था, इतने जन्म भी लेते थे, पर उतना झुकना पड़ता था ना, तो वो झुकना भी है, एक गुण है आशीर्वाद लेने का, आशीष लेने का, दुआ लेने का। तो अभी उतना झुकने को नहीं होता है, घुटने तक होते हैं, तो कहते हैं ये घुटनों का दर्द ज्यादा हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि आप घुटनों को ही नमस्ते करते, ऐसा भी कहा जाता है ना, तो दुआ इसको मिलती है ना तो वो दुआ देता है, ऐसे ऐसे ही कर लेते। तो इसीलिए जो हमारी पुरातन संस्कृति है, भले करके हम जैसे हम जब संस्कृत पढ़ते थे तब तो पैर पूरे पढ़ने पड़ते थे गुरु के, ये नियम होता था। आज बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है कि तुम बाबा को नमस्ते करो, बाप ही खड़े होकर के नमस्ते करते हैं बच्चों को। तो ये गुण बाबा का बच्चों में जितना आत्मसात होता जाता है, अंदर तक गहराई तक जाता जाता है, उतना हम अन्य अनेक आत्माओं के दुआएं प्राप्त करते हैं। आज हम साकार ब्रह्मा बाबा को याद करते, ब्रह्मा बाबा से ही दृष्टि लेकर के परमात्मा बाप तक पहुंचते, ये सब तब संभव हुआ जबकि ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की बात को पीछे आगे पीछे देखते हुए अपना लिया, अपना सार सर्वस्व इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया, तभी जा करके उस पिता परमात्मा के सर्वशक्ति के आशीष दुआएं उस बाप को मिली, तब जा करके वो प्रजाओं का पिता बन गया, विश्व की प्रजा के प्रजा का पिता और सबका प्यारा। एक बार हम पांडव भवन मधुबन में थे, तो दादा नारायण जो बाबा का दूसरा लड़का था, बॉम्बे में रहते थे, वो सपत्नी यहाँ आए थे। मैं उनसे पूछा, दादा बाबा कैसा था? हाँ अच्छा था। तब मेरे को लगा हम जिसे देखा भी नहीं, इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह से देखते हैं, इतना स्नेह से दृष्टि लेते हैं, पर वो लौकिक में नहीं होता था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने पाना था सो पा लिया, जैसे ब्रह्मा बाबा का गीत था वही गीत हमारा भी बन गया कि पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। तो अब क्या किसी को आस रहती है, किसी को आस तो है नहीं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर शिव बाबा के सारे ही गुण भरते जाएं धीरे धीरे। एक बात है, आजकल हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो कलुषित वातावरण है। यहाँ एक ने कहा मुझे कि हम विष पीते हैं, विष खाते हैं, विष सेवन करते हैं, तो क्या करेंगे? वो जहाँ से आ रहा है उसका भी हमको पता नहीं, निसर्ग इतना गंदा हो गया है, प्रकृति इतनी तमोप्रधान हो गई है, तो वो बाहर की प्रकृति तमोप्रधान, तो वही प्रकृति मुझ आत्मा के इर्द गिर्द शरीर के रूप में है। ये शरीर भी प्रकृतिबद्ध है, प्रकृति से बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है, तो वो तत्व जब विकृत होते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, फिर शरीर का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। अब ये उद्धार कौन करेगा? तो ये एक वाक्य गीता में बहुत अच्छा है, आत्मना आत्मानम उद्धरेत नात्मानम अवसादयेत। हम हमारा उद्धार खुद ही करेंगे, हम अपने आप को कभी कोसेंगे नहीं। तो आत्मना आत्मा आत्मा का उद्धार आत्मा ही करे, माना मैं अपना उद्धार खुद करना चाहिए। दूसरे के आश पर, दूसरे की दुआओं पर, दूसरे के आशीर्वाद पर अवलंबित नहीं होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक प्रक्रिया है हमारे जीवन में। जितना हम अपने लिए अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, ईश्वर तो हमारा ध्यान रखता ही है निश्चित रूप से इस संगम युग में, क्योंकि हमने अपना उसको तन दिया, मन दिया और धन भी दिया है, तो दिया है तो वो हमारा ध्यान रखेगा। तो वो कहते हैं सबका ध्यान रखने वाले तेरा ध्यान ईश्वर रखेगा, तो ईश्वर ध्यान रखता है हमारा, क्योंकि वो पिता है, सखा है, शिक्षक है, सद्गुरु है, सर्वस्व है। तो ऐसे पिता के हम बच्चे बने हैं संगम युग में, ये भी एक बहुत बड़ी प्रारब्ध है। तो हमको बाबा ने दुआ के रूप में अपना बनाया है, हमें एडॉप्ट किया है। आप यदि गहराई से सोचेंगे या ध्यान रखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कैसे उसके आशीर्वाद हमारे ऊपर एक के बाद एक आते हैं, चाहे वो शारीरिक बाधाओं के रूप के समय या अन्य समय पर। लगता है हम जैसे बाबा अव्यक्त मुरली में कह रहे थे, बाबा की पालना, परमात्मा पालना किसको मिलती है, ये महसूस करने के लिए थोड़ा सा अंतर्मुखी अवस्था चाहिए, इंट्रोवर्टनेस चाहिए कि बाबा पालना कैसे करता है। क्योंकि पालना उन लोगों की ही बाबा नहीं करता है जो केंद्र में समर्पित होते हैं, ये आप सबको अवगत कराना समझना बहुत आवश्यक। क्योंकि केंद्र में रहने वालों की पालना बाबा करता है, भगवान करता है, नहीं, हम सब की जो भी बीके हैं सबकी पालना। परंतु वो थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे या अनुभव करेंगे तो लगेगा कि हाँ, हमें अबंडेंट ऑफ दुआएं, मानो ढेर सारी दुआएं मिल रही है, तभी हम जा करके ऐसा हंसमुख वाला चेहरा और हर्षित मुख वाला चेहरा लेकर के समाज में, घर में, गृहस्थी में, परिवार के साथ जीते हैं, कोई चिंता हमारे नहीं। तो वो बाबा की पालना है हम बच्चों को, इसका आप सबको निवेदन है कि इसका आप सबको अनुभव करना है कि बाबा हमको कैसे रंक से राव बनाता है, गरीब से अमीर। मैं जिस विंग में था, सोशल विंग में हूँ, तो हमारे जो अमीर चंद भाई थे, वो उनका नाम था फकीर चंद, तो वो बाबा कहता था तुम फकीर नहीं हो बच्चे, अमीर हो, तो अमीर चंद बन गए वो। तो वो तो नाम से बने, काम से भी बने। ऐसे ही हम सब भी अनुभव करें इस जीवन में, कैसे हमारे जीवन में श्रीमंत की ये आती जाती है, झोली हमारी सांवलचा की हुंडी भरती जाती है, ये देखना, ये अनुभव करना चाहिए। ये अनुभव गहराई से करेंगे ना तो आपको लगेगा कि बाप की दुआओं के माध्यम से हम खुशनुमा जीवन जी रहे हैं, बहुत आवश्यक है। नहीं तो कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है हम करते हैं हम पाते हैं। नहीं, ऐसा दुनिया वाले भी करते हैं ना, पाते क्या है जिंदगी में? दुख, अशांति, रोग, पीड़ा, द्वेष, असूया, राग, सारी बुराइयां उनके अंदर भरी रहती है। खान पान की शुद्धि नहीं रहती है, व्यवहार में कटुता होती है। तो ये सब पालना नहीं होने के कारण होता है। यहाँ बाबा कहता है जो देख बचे बीती सो बीती, जो हुआ हुआ, पास करो उसको, आगे बढ़ते जाओ, पत्थर को फोड़ने में नहीं लगो, उसको उसके साइड से चले जाओ। तो ये संभव तभी हो सकता है जब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए, और ये जो दैवी परिवार हमारा है इसकी भी कृपा जरूरी है। माना दुआ, बाबा आज कह रहा था मुरली में, बाप कोई तुम बच्चों पर आशीर्वाद नहीं करते हैं, बोलते हैं बाबा ऐसे, परंतु उसकी दुआ के बिना हम आगे बढ़े, यहाँ तक पहुंचे, ये संभव नहीं था, ऐसा मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव है, आपका भी होगा। क्योंकि वो ईश्वर हमें अपनाया है दुआ। देखिए हम एक ही घर में रहते हैं, चार पांच भाई हैं, चार पांच भाइयों में चार भाइयों को ज्ञान अखरता ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है, अखरता है। एक भाई इसमें आगे बढ़ जाता है, अपने जीवन को पावन बना लेता है। ये तभी संभव है जब भगवान बाप की, पिता परमात्मा की दुआएं या आशीष या पालना अवश्य मिलती रहती है। तो इसीलिए हम सब ये समझ के चलते हैं, तेरे है ना, जिसके मत्थे सा हाथ उसका, जिसके सर पर उसका हाथ है, तो और कोई क्या कर सकता है। पिता परमात्मा का हाथ हमारे सबके, देखिए हम किसी पर लौकिक में भी जब प्रणाम करते हैं तो वो हमारे सर पर हाथ रखता है। जब कोई हमको तिलक लगाता होता है ना, तब भी हम ऐसा तो करेंगे। अब उसका हाथ नहीं लगता है तो अपना ही हाथ अपने ऊपर आत्मना आत्मानम उद्धरेत के हिसाब से लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि हम संगम युग में इन दिनों परमात्मा पालना में पल रहे हैं। हमारी सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, आशाएं वो पिता परमात्मा पूरी कर रहा है। जो भी श्रेष्ठ है, जो भी सतयुग में ले जाने वाली है, संग शांति धाम में तो सब जाएंगे, सारे के सारे कितने करोड़ आत्माएं हैं, बाकी सतयुग में तो गिने चुने आएंगे ना, कहाँ 9 लाख, कहाँ 140 भारत, 140 करोड़ भारत के और 800 करोड़ विश्व की जनसंख्या है। हम जब स्वतंत्र हुए तो हमारी जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी, अभी देखिए 35 जा करके 140 100 करोड़ शरीरधारियों का आगमन हुआ। अब उन धरती तो उतनी है जितनी पहले थी, जल प्राप्त होना या भोजन की व्यवस्था होना भी उतनी है, फिर भी इतने लोग पल रहे हैं। ये भी परमात्मा की पालना है, चाहे इनडायरेक्ट है, हमको जो मिल रही है वो हमारी उन्नति, पल पल क्षण क्षण हमारी उन्नति होती रहती है। ये अनुभव करना चाहिए कि हम ईश्वरीय महावाक्यों के माध्यम से हम उन्नत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। कल जो थे वो आज हम नहीं हैं, कल से आज हमारी खुशी में बढ़ोतरी हुई है। कारण है कि ये जो प्रकृति है ये भी उस आत्मा का साथ देती है, जो प्रकृति जीत बनता है। क्योंकि बाबा आते हैं तो गीता में एक वाक्य है, प्रकृतिम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, मैं ईश्वर ये पंच तत्वों को अपने वश में लेकर के आत्मशक्ति के माध्यम से प्रकट होता हूँ। तो ये किसी की समझ में नहीं आता है कि प्रकृति को अपने अंडर किया। तो बाबा भी कहता है प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत। तो प्रकृति जीत माना ये जो पंच तत्वों के तत्व शरीर में तत्व हैं, ये विकृत हैं, विकारी हैं। अब इनको ये माया की बद्दुआ इनको लगी हुई है, माया का श्राप इनको लगा हुआ है, इनसे हम कैसे मुक्ति पाएंगे, प्रकृति पर जीत कैसे पाएंगे। तो प्रकृति माना शरीर है, शरीर है माना आंख है, नाक है, कान है, ये अपने अपने ढंग से तो वो कहते हैं प्रमाथिनी, ये इंद्रिय मेरे को जबरदस्ती अपनी ओर खींचते हैं, जबरदस्ती मैं आत्मा हूं, मेरी ये, मेरा ये शरीर है, पर शरीर के अंगांग जो है ना वो ट्रेंड है विकारी जीवन के लिए, इनको बद्दुआ मिली हुई है, श्राप मिला हुआ है, हम नहीं चाहते ज्ञान के अनुसार हमारे आंखें क्रिमिनल हो, हम नहीं चाहते ज्ञान के अनुसार हमारे मुख से कोई कटु वचन निकले, हम नहीं चाहते ज्ञान के अनुसार कि हम कोई बुरे सुने, आनोभद्रा श्रृणवंत, ऐसा कि हम कानों के माध्यम से श्रेष्ठ वचन ही सुने, ये बोला पर कहाँ मिलते हैं श्रेष्ठ वचन, यहां मिलते हैं यज्ञ में मिलते हैं, इस यज्ञ में मिलते, इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं प्रकृति को जीतने के। तो ये जो इंद्रिय अपनी ओर खींचते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथानि, आत्मा को खींचते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, हम नहीं चाहते ऐसा देखना, परंतु वो ऑटोमेटिकली आंख उधर चली जाती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं खुली आंख से योग, खुली आंख से योग करना मुश्किल है बंद आंखों से, तो क्यों बंद करना चाहते हो, क्योंकि कहते हैं नयनम चंचल, नयन चंचल है, नहीं आंख चंचल नहीं होती है, आंख देखती नहीं है, आंख के द्वारा अब ज्ञान मिला है, मैं आत्मा देखती हूँ, कानों के द्वारा मैं सुनती हूँ, भोजन ये जो जीवन है, आज हम देखते हैं कि हम लोग बाहर की दुनिया में इन क्या ये खान पान के कोई परहेज नहीं करते, हम लोगों का जीवन कितना परहेज वाला है, चलो करके हम ऑनियन एंड गार्लिक, वो क्या कहते हैं प्याज और लहसुन की ही बात है तो भी बाहर के लोग हंसते हैं, इसके बिना कैसे भोजन बन सकता है, परंतु हम करते हैं, हमको ईश्वर की पालना है, ईश्वर की शक्ति हमें मिली हुई है जो इस भोजन को शुद्ध बना करके सेवन करते हैं, तो वो शुद्ध भोजन माना प्रकृति शुद्ध हो करके शरीर को प्रकृति को शुद्ध बनाएगी, और फिर यह प्रकृति उस बृहद प्रकृति को शुद्ध करेगी, ये जबरदस्त भगवान की दुआ हम सबको मिलती है, ध्यान देना चाहिए इस बार पर, हम कोई ऐसे लौकिक पढ़ाई वाले नहीं हैं, हम ईश्वरीय पढ़ाई वाले हैं, हमें ईश्वर पढ़ा रहे हैं, और ईश्वर पढ़ाना जैसे कहा गया पालना और शिक्षा, तो कहा जाता है शिक्षा से मनुष्य सुधरता है, तो आज तो बाहर में सुधरते नहीं है, लोग बिगड़ रहे हैं, जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही दुराभिमानी होगा ऐसे देखने में आ रहा है मेजॉरिटी, तो अब यहाँ हम जितना पढ़ते हैं जितने सीनियर होते जाते हैं उनका मुख और ही, जैसे कल रविवार को बाबा कह रहा था नयनों से आंख, वो जो गीत वो जो गायन है नयनम मधुरम मुख अधरम मधुरम वदनम मधु, तो ये कहाँ का गायन है, संगम का, सतयुग का नहीं है, क्योंकि सतयुग में कोई गायन होता ही नहीं है, गायन के योग्य हम बनते हैं परमात्मा शिक्षा से, तो ये जो वंडरफुल शिक्षा हमको मिल रही है ये है भगवान बाप की दुआ हमारे ऊपर, कृपा, बाबा कहते हैं बाबा कोई कृपा नहीं करता है, बच्चे पढ़ाई पढ़ाता है, शिक्षा देता है, ऐसा दिव्य शिक्षा, देखिए कितने चार वेद इतने उपनिषद इतने पुराण होते हुए भी सामाजिक स्थिति आज कैसी है, राष्ट्रीय स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, कितना भी होगा तो जैसे एक कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी, कितना डेंजर है, तो ऐसे बाहर बहुत मिलेंगे आडंबर वाले लोग, तो इसीलिए जो पालना ईश्वर की मिल रही है वंडरफुल है, शिक्षा जो मिल रही है वो बहुत बड़ी है, गहन है, श्रेष्ठ है, जीवन को पलटाने वाली है, प्रकृति जीत बनाने वाली है, फिर बाबा कहता है वरदान देते हैं, एक वरदान पाने के लिए मनुष्य तन मन धन समर्पित कर देता है बाहर गुरुओं के लिए, यहाँ तो कितने वरदान मिलते हैं, रोज वरदान मिलते हैं, और एक एक वरदान एक से बढ़कर के एक होता है, जितने हम वरदान उसको मिलते हैं, देखिए वरदान हमने तो कल तक सुना था कन्यादान, और यहाँ भगवान आकर के कहते हैं मैं वरदान देता हूँ, माना विशेष करके भाइयों को समर्पित करता है, क्योंकि मैंने देखा है, जहां तक मेरा अनुभव है, कि कौन सुधरना चाहिए। लोग कहते हैं, लोग बेटे की तरफ हो जाते हैं, बेटी को ही कोसते रहते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ऐसा दिखाई देना चाहिए, तुम्हारा श्रृंगार ऐसे होना चाहिए। वो लड़की को ही कोसते रहते हैं, लड़के को कुछ बोलते नहीं है। पर भगवान बाप आकर के लड़की के माध्यम से लड़के को सुधारता है। ये एक वंडरफुल बात है कि हम, हमारी बहनें जो इस ज्ञान में हैं, दादियां हैं, दीदियां हैं, ये सब हमारे सुधार के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके केंद्र में रहती हैं। केंद्र में रहना कोई छोटी बात नहीं है। जब तक कि ईश्वर की दुआ, कृपा, आशीर्वाद मिल जाए, उनका उनको एडॉप्ट कर ले, तो इतने सारे जो भी कार्य हमारे एक से बढ़कर एक चलते हैं, वो उस ऊपर वाले की, कहते हैं ना, ऊपर वाले का कृपा चाहिए। ऊपर में कहाँ है, कौन है, कोई नहीं जानता, पर बार बार उसकी आंखें ऊपर तक चली जाती हैं कि ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, भगवान की दया होनी चाहिए। अरे, दया होने के लिए तुम दुआ करो, और दुआ करने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए। ये जो ज्ञान है बाबा का ना, बाबा का ज्ञान, वो जब मेरा बन जाता है, मेरा ज्ञान बन जाता है, तब जा करके दुआ देने की योग्यता मेरे में आ जाती है। जैसे ये हाथ होता है, तो कल तक तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे ना। मैंने देखा राउंड अबाउट 69 से कोई भी दादी ऐसा नहीं करती थी हाथ, माना आशीर्वाद के जैसा। परंतु 2000 के शतक के इधर हमने देखा दादियां ऐसे ऐसे हाथ करने लग गई थी। ऐसे कभी भी आप देखेंगे, ब्रह्मा बाबा कभी ऐसे नहीं है कि बच्चे मेरा आशीर्वाद तेरे पीछे, नहीं आशीर्वाद होता है। हम आशीर्वाद मांगते भी नहीं हैं, क्योंकि मांगना, आज बाबा ने कहा, मरने से भला है। आशीर्वाद मिलते हैं जो झुक करके सेवा करता है, नम्रचित होकर के सेवा करता है, उसको बहुत 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 दुआएं मिलती। जो निराभिमानी होकर के और कोई प्राप्ति की इच्छा रखे बिना सेवा करता है, क्योंकि उसको होना चाहिए। जैसे गीता में कहा गया, मगर कोई उसका अर्थ नहीं जानता। हालांकि कोई एक गीता सम्मेलन में स्वामी जी मिले, कहा कि मैं ये गीता के श्लोक का अर्थ 6 महीने बता सकता हूँ। मैंने कहा, जरूर बता सकते हैं, न तो वो सुनने वाले के पल्ले पड़ता है, समझ में आता है, न आपको कोई समझ उससे उत्पन्न होती है। क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का एक श्लोक का 6 महीने का ज्ञान जरूरी नहीं है। जरूरी उसको ये है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, तो आपका ज्ञान उसके लिए दुआ बनेगा। तो ऐसा ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, इसकी महत्ता उतनी नहीं होती है जितना, देखिए, बाहर में एक लेक्चर करने, ये जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जिसको बोलते हैं, वो एक स्पीच के लिए 10-10 हजार रुपए लेते हैं, और लाखों रुपए का हॉल बुक करते हैं। यहाँ करोड़ों के हॉल में हम बैठे हैं, और हमें इतना मोटिवेशनल, माना आत्म उन्नति की बातें बाबा सुनाता है। किसी के माध्यम से सुनाता होगा, क्योंकि खुद ईश्वर ही करे नहीं, बाबा कहते हैं मैं किसी के माध्यम से भी सुना सकता हूँ। तभी तो गीता में है कि मानुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य के तन में आश्रय लेकर के जो मैं ज्ञान देता हूँ। मूढ़मती लोग समझते नहीं है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर ने इनको ज्ञान दिया है। क्योंकि आज बाबा ने कहा, तुम किसी से मांगते नहीं हो, मांगने की दरकार ही नहीं है। तो ये कैसे संभव हुआ, बिना मांगे ऐसा डायमंड हाल बन जाए, हमारे केंद्र एक से बढ़कर के एक। अभी देखा आपने रायपुर में इतना बड़ा वंडरफुल हाल हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर ओपन करने आए, तो ये कैसे संभव हुआ। जबकि हमारे भाई बहने, हाँ, गरीब हैं, परंतु उनको एक लगन लगी हुई है कि मैं तन मन लगा करके ईश्वरीय सेवा करूंगा, तो ईश्वर की दुआ मुझे मिलेगी। तो हम सचमुच में अनुभव करो आप सभी कि भगवान की दुआ से ही हम पल रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, हम वरदान प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए जब ये मिल रहा है, तो क्यों नहीं देना चाहिए। मिल रहा है ना, तो एबंडेंट में मिल, बहुत बहुत ढेर सारा हमको, ढेर सारी प्राप्तियां हमको हो रही हैं, तो चलो उस ढेर में से थोड़ा सा निकाल करके मुट्ठी भर किसी को दे दें तो क्या जाने वाला है हमारा, है ना। जबकि भगवान खुद कहते हैं तेरे भाने सबका भला, तो भला तो होगा क्योंकि हम भले मानुष है, लोग कहते हैं भले मानुष, तो इसीलिए दुआ देंगे तो दुआ वापस में मिलेगी। और ये कहा गया ना, एक श्लोक है, कर्मण्येव कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत रखो। बिना फल की इच्छा के मैं दुआ तभी देता हूँ लौकिक में जबकि किसी की दुआ मुझे मिलती होगी, यहाँ ऐसा नहीं है। मिले न मिले परंतु विश्वास है मिलेगा, ये पक्का है हमको कि हम जो कर रहे हैं इसकी प्रारब्ध हमको 101% मिलने ही वाली है। तभी जैसे बाबा कहते हैं बच्चे वहां दान करते हैं तो जाकर के दूसरे जन्म में कुछ मिल जाता है। अब हम यहाँ दूसरे जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम 21 जन्मों की बात कर रहे हैं, तो वो तभी संभव है दुआएं लेने का जब हम उसको देंगे। देंगे तो आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं मेरे प्रति किसी की भावना श्रेष्ठ न भी होगी परंतु मैं श्रेष्ठ रखूं तो आज नहीं तो कल पिघलेगा। जैसे बाबा कहता है कोई क्रोध करता है तो तुम फूल बरसाओ, हाँ आज नहीं बदलेगा तो कल बदलेगा। हमने कई परिवार में देखे, एक बॉम्बे का परिवार आया था मधुबन में मेडिटेशन हॉल में, वो 12 साल वो पति पत्नी पति को भू भू करते रही, उसका फल 12 साल के बाद निकला, तो वो कहता था यही मेरी गुरु है। तो दादी ने कहा जब गुरु है तो पैर पड़, तो उसको पैर पड़ने लगाया। तो ऐसा वंडरफुल पार्ट हम बच्चों का है, तो दुआएं मिलती है ना, आज नहीं तो कल। हम उनको ज्ञान की शिक्षा देते जाएं तो हमारा विश्वास है कि ये, क्योंकि बाबा कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे कोई भी मत संप्रदाय का होगा जाति का होगा उसको ये ज्ञान मिलना ही है और मिलेगा भी, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब तब हम सम्मुख होकर के देते थे, आज देखिए कितने माध्यम है ज्ञान को देने के, तो इनडायरेक्टली दुआ मिलती है ना। तो ज्ञान देना दुआ है, उसकी आंख आज खुलेगी या कल खुलेगी, पर खुलेगी जरूर, क्योंकि बाबा कहता है पावन हुए बिना तुम शांति धाम में जा नहीं सकते। सतयुग की बात तो दूसरी है, शांति धाम में भी नहीं जा सकते, और हम पावन बनेंगे तब तब की बहुतों की दुआएं हमारे ऊपर बरसेंगे, क्योंकि परिवर्तन होने के लिए कई आत्माओं की शुभकामनाएं शुभ भावनाएं शुभ आशाएं हमारे प्रति होनी चाहिए, तो ये बातें हमारे ध्यान पर हो। दूसरी बात, लेना है तो पहले देना सीखो, बिना आपके दिए और कोई वापिस आपको देने वाला है नहीं, ये पक्का है। क्योंकि हम समझते हैं हम देने वाले हैं, नहीं, हम तभी देंगे जब वो सामने वाले से मिलने का है, कहाँ सीधे मिले या न मिले, पर मिलना जरूर है। क्योंकि ज्ञान माना प्रकाश, ज्ञान माना समझ, ज्ञान माना शक्ति। आज बाबा ने कहा योग से, योग एक बल है, और यह बल क्या करता है, हमें योग्य बनाता है दिव्य दुआ देने और दुआ लेने। जितना योगिक शक्ति हमारी बढ़ेगी, उस ईश्वर पिता की याद को योग कहा जाता है। योग बाबा कहता है योग अक्षर बच्चे थोड़ा गहरा लगता है, तुम याद करो। और ये याद जो है, कोई कहते हैं याद से, याद क्या होती है, उठते बैठते जैसे गीता में कहा हुआ है पश्चिम श्रीणवन, फिर देखते हुए खाते हुए पीते हुए, यहाँ तक भी एक दिन बाबा ने कहा कि अर्जुन जो था ना, तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 निकलता था। हनुमान जी के भी ऐसे, वो राम राम, ये दो पात्र हैं जिनके अंगांग से ईश्वर चिंतन निकलता। तो ये ईश्वर चिंतन कईयों की दुआएं लेने के लिए मुख्य बनता है। क्योंकि वाइब्रेशंस आज बहुत जरूरी है हमारे ज्ञान को। जितना हम स्थूल रूप में देते हैं, वाणी के माध्यम से देते हैं, उससे भी अधिक यदि हम संकल्पों के माध्यम से देंगे तो वो अंदर ही अंदर उनके अंदर गहराई तक पहुंच जाता है, ये निश्चित है। क्योंकि हमने अपने अंदर ज्ञान की गहराई को अपनाया, ज्ञान को आत्मसात किया, ज्ञान की घुट्टी पी और वो ज्ञान अपना बन गया। जैसे समझिए, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। हम कई बार उदाहरण देते हैं कि भाई हमने क्रोध छोड़ा, गुस्सा छोड़ा। एक दो चार बार बोलने से वो बोलेगा, बोला ना एक बार तेरे को गुस्सा मैंने छोड़ दिया, तो गुस्सा तो छोड़ा नहीं। क्योंकि गहराई में क्या बैठा हुआ है अपने, वो मेरी समझ में नहीं है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति परीक्षा के रूप में आता है तब जाके पता पड़ता है कि अंदर और भी कचरा भरा हुआ है जो मुझे दुआ लेने नहीं देता है। इसीलिए हम बाबा भी कल या परसों कह रहा था, बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो एकांत में बैठ करके ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो दुआ लेना है उसका एक माध्यम है दुआ देते चलो। दुआ लेना है उसका एक माध्यम है ज्ञान के प्रकंपन फैलाते चलो बाप की याद के माध्यम से। यदि दुआ लेना है तो जरूर है, जितना हम नम्र चित्त बनेंगे, निर्माण चित्त बनेंगे, उतना दुआ देंगे। दुआ लेना है तो चित्त में किसी के प्रति भी कोई भी कलमश न हो, जिसको बड़ी दादी का एक स्लोगन था, निर्मल अवस्था। दुआ लेना है तो सच्चाई, सफाई, सादगी को अपनाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कल भी जो बाबा के इतना वंडरफुल स्टेटमेंट है बाबा का अव्यक्तवाणी का, कि सत्यता भी तब प्रतिफलित होती है, सत्यता भी तब फलीभूत होती है, सत्यता भी तब प्रैक्टिकल में आती है जबकि पवित्रता होगी। क्योंकि पवित्रता के आधार पर सत्यता का चिंतन होता है, सत्यता की प्रतिष्ठापना होती है। क्योंकि दुनिया में सत्यवादी बहुत होते हैं, सत्य हरिश्चंद्र ऐसे बोले जाते हैं ना, कई होते हैं जो जिंदगी में कहते हैं। हमारी बड़ी दादी थी तो एक दिन वो कह रही थी किसी से कि देखो मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो वो झूठ न बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके पीछे पवित्रता का बल होता है ना, वो झूठ बहुत बड़ा कार्य कर जाता है, वो सत्य बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। तो इसीलिए ये जो बातें हैं दो दो तीन तीन शब्दों के दादियों के द्वारा दिए हुए, इनको जितना हम चिंतन में लाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो वो हमारे लिए दुआ सिद्ध होगी। और वैसे ही हमारे माध्यम से अंतर से दुआएं दूसरों को देने का भी कारण बनेगी। इसीलिए हम किसी से दुआ मांगते नहीं, जैसे बाबा ने कहा बच्चे तुमको किसी से धन नहीं मांगना है तो दुआ भी नहीं मांगना है ना, दुआ ऑटोमेटिकली मिलेगी जब हम दया करेंगे। दया कृपा हमको अधिकार है दया करने का, कृपा करने का, क्योंकि हम डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हैं। हमें ईश्वर रोज आकर के पढ़ाते हैं, उसकी पढ़ाई से हमें बल मिलता है। भले करके बाबा आज कहा ज्ञान से बल नहीं मिलता है, परंतु नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, ज्ञानमेव पराशक्ति, ज्ञान परम शक्ति है। और भी कहा जाता है तीन लोकों में ज्ञान के सदृश और कुछ भी नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? वो ये ज्ञान है जो पिता परमात्मा ब्रह्मा के माध्यम से हमको दे रहे हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को जितना गहन रीति से अध्ययन करेंगे, यहाँ देखिए पाठशाला में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो अब हम भले करके किसी रीति से बैठे होंगे पर हम गॉडफादरली वर्ल्ड इनकॉर्पोरियल यूनिवर्सिटी में बैठे। कितना अच्छा शब्द है गॉडफादरली इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी में एक ही ज्ञान दिया जाता है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जो सारी यूनिवर्स में एक ही ज्ञान देने वाली, हर एक का अपना अपना ज्ञान का तरीका होता है। और सारे ज्ञान का उनका एक ही लक्ष्य है, पेट भरने का। कैसे? क्योंकि दुनिया को चिंता है कैसे पेट भरा जाए, दो रोटी कैसे नसीब होगी। हमको चिंता नहीं है, हमारी चिंता ईश्वर करने वाला बैठा है, उसकी दुआएं हमारे सर पर हैं। तो ये रखेंगे और अन्य आत्माओं के प्रति जितना संभव है उतना शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी दुआएं हमको मिलती जाएंगी। क्योंकि जैसे होता है ना, इस हाथ ले इस हाथ दे, बिना दिए कोई हमको देने वाला है नहीं, और हम देंगे तो वो देगा। अब वो सोचे वो देगा देना कि नहीं देना, उसके ऊपर निर्भर करता है, पर देगा जरूर। क्योंकि तुम आत्मा, जैसे बाबा वो उदाहरण देता है, मैं भैंस हूँ तो भैंस। इसीलिए हम भी 89 ईयर से एक ही पाठ पढ़ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। अब ये है कि ये आत्मा है क्या चीज, इसमें क्या क्या भरा हुआ है, ये बैठ करके एकांत में पिटारा खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल से अनेक आत्माओं के प्रति दुआएं निकलेंगी और अनेक आत्माओं की दुआएं हम सबको मिलेंगी। इसलिए ऐसे दुआ के पात्र आप सबको हमारा अभिनंदन। ओम शांति।
सभी